और आइए अरपा रेडियो पर अब सुनते हैं कार्यक्रम भेंट मुलाकात योगेश के साथ। आज के इस कार्यक्रम में देवयानी भारद्वाज के साथ योगेश पांडे की हुई बातचीत हम आपको सुनवा रहे हैं।
श्रोताओं जय जोहार, हम आपके सामने हैं एक भेंट मुलाकात के साथ। पर आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे बीच हैं, हमारे साथ हैं देवयानी भारद्वाज जी, जो दिल्ली से हैं और जिनका पत्रकारिता में बहुत लंबा अनुभव रहा है। पिछले 15 वर्षों से आप शिक्षा से जुड़ी हैं, भाषा के संदर्भ व्यक्ति के रूप में लगातार काम करती रही हैं। ह्यूमाना एक ग्रुप है जो पीपल टू पीपल जोड़ने का काम करता है और आप सीनियर कंटेंट डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट के तौर पर काम कर रही हैं। आप राजस्थान के शिक्षकों के साथ काम कर चुकी हैं, छत्तीसगढ़ के शिक्षकों के साथ काम कर चुकी हैं, उत्तराखंड और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन और दिगंतर के लिए बहुत सारे सेमिनार्स और टीचर ट्रेनिंग्स में आप भाषा को लेकर एक रिसोर्स पर्सन के बतौर काम कर चुकी हैं। देवयानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अरपा रेडियो में।
शुक्रिया योगेश जी, सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्ते और इस कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मेरे लिए बहुत खुशी की बात है।
तो देवयानी जी, बस आपसे बातचीत करने का हमें सौभाग्य मिला। आप पहले अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि कैसे आपका एजुकेशन हुआ और भाषा के साथ आपके जुड़ाव के क्या अनुभव हैं आप?
जी, मेरा भाषा के साथ जुड़ाव तो ऐसा है कि मैं खुद एक ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ पे पढ़ने लिखने का माहौल रहा। मेरे पिताजी खुद लेखक हैं और रेडियो दूरदर्शन में काम करते रहे हैं, तो जन्म से घर में परिवार में पढ़ने लिखने का माहौल मिला और इसलिए स्वाभाविक रूप से ही साहित्य पढ़ने की तरफ रुचि होती गई और उसी में आगे पढ़ाई लिखाई की। और क्योंकि मीडिया का भी एक तरह का एक्सपोजर था, तो जब पढ़ाई खत्म की तो ऐसा लगा कि मीडिया में जाना चाहिए। दस साल करीब पत्रकारिता की और इसी तरह की मित्र मंडलियां भी बनती रही जिनमें हम लोग साथ में मिलके कविता गोष्ठियां करना या दूसरे विषयों पे आप यूनिवर्सिटी लेवल पे हम कुछ सेमिनार ऑर्गेनाइज करते थे। तो एक स्वाभाविक तौर पे ही जो रिश्ता बनता चला गया जिसमें कुछ अलग से कभी की कोशिश की हो, कुछ इवेंट की तरह हुआ, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि ये स्वाभाविक तौर पे ही चलता चला गया। फिर मैंने पत्रकारिता की, उसमें 10 साल में लगभग राजस्थान के अखबारों में काम करती रही, दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका में लंबा समय मैंने बिताया
जी।
और इसी क्षेत्र में काम करते हुए जो टर्निंग पॉइंट है वो मुझे लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में आना मेरे लिए जरूर एक टर्निंग पॉइंट था और वो इसलिए संभव हुआ शायद कि मेरी मित्र मंडली में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो शिक्षा में काम कर रहे थे
जी।
और मैं जब अपने बच्चों को एजुकेट करने के सवाल मेरे सामने आए तो मुझे, या मैं दूसरी बात ये थी कि मैं बहुत सारा अनुवाद कर रही थी शिक्षा में, बहुत एक शिक्षा विमर्श पत्रिका उसके लिए काफी अनुवाद किए, कुछ और संस्थाओं के लिए अनुवाद किए। तो मेरा अनुभव ये रहा कि शिक्षा में जो बातचीत होती है, जो विमर्श है, वो एक अलग स्तर पे चल रहा है और हमारी जो वास्तविक स्कूली शिक्षा है वो एक अलग स्तर पे चल रही है, उनके बीच में बहुत बड़ा गैप है। हम बात करते हैं कि बच्चे को समझ के शिक्षा होनी चाहिए, लेकिन स्कूल में तो वही कंटेंट है, वो पहले से तय है और उसको याद ही कर लेना है, समझ क्या रहा है या नहीं रहा है। तो ये जो सारे सवाल थे, इस तरह की चीजों को जब मैंने पढ़ना शुरू किया, बड़े बड़े दार्शनिक जो शिक्षा के बारे में कह रहे थे और शिक्षा का यथार्थ मुझे दिखाई दे रहा था, अपने आसपास दूसरे बच्चों को पढ़ते हुए देख रही थी, खुद अपने स्कूलिंग के अनुभवों को देख रही थी, मुझे लगा था कि यहाँ इसमें बहुत बड़ा गैप है। और भाषा तो स्वाभाविक रूप से मौजूद थी, लेकिन जो दिशा होनी चाहिए कि यदि किसी भी विषय में यदि बेहतर समझ विकसित होनी है तो उसके लिए उस विषय में शिक्षा किस ढंग की हो रही है उसको तो देखना पड़ेगा। तो फिर मुझे लगा कि ये जो इस तरह की संस्थाएं हैं वो दरअसल उन ऑल्टरनेटिव को तलाश कर रही हैं जिससे कि शिक्षा को बेहतर बनाया जा सकता है। तो इसका जो रुझान है वो मेरा करीब 20-25 साल पहले इन सवालों पर सोचना शुरू किया और लगभग 2004-5 के बाद से लगातार अलग अलग चीजों के साथ जुड़ के काम करना शुरू किया।
हो सके तो अब कोई शम्मा जलाइए, कर हो सके तो अब कोई शम्मा जलाइए, इस तारे सियासत का अंधेरा मिटाइए, इस तारे सियासत का अंधेरा मिटाइए।
शिक्षक के लिए ये जो 1.5 महीने का समय है, 1 मई से लेकर 15 जून का, ये हर साल का एक निर्धारित लॉकडाउन है उसके लिए। मतलब लॉकडाउन कहना शायद उचित नहीं भी है, लेकिन उस 1.5 महीने में वो शिक्षक घर में रहता है, उसे स्कूल नहीं जाना होता, उसे बच्चों के साथ कोई काम नहीं करना होता। क्या हम 16 जून से लेकर 30 अप्रैल तक का जो विद्यालय का सत्र होता है, उस सत्र की तैयारी इस 1.5 महीने में कर सकते हैं क्या? और यदि कर सकते हैं तो मैं आपसे हिंदी भाषा के शिक्षक के लिए और प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के लिए वो चीजें समझना चाहूंगा कि हम ऐसी क्या तैयारियां कर सकते हैं कि जो हमको वहां जाकर किताबों के पन्ने ना पलटने पड़े स्कूल खुलते ही, और वो जो हमारे पास अभाव हो जाता है प्लानिंग का, वो न रहे।
बिल्कुल, ये प्रश्न सही है कि हमारे पास में कोई भी ऐसा जो समय है जो बल्क में हमारे पास में आया है
जी,
तो इस समय को हम बाकी तमाम चीजों को करते हुए इस समय को हम अपने काम के लिए ज्यादा उपयोगी और ज्यादा रचनात्मक कैसे बना सकते हैं, ये बात तो है। और ये तो मुझे लगता है कि टीचर किसी भी समय में ऐसा नहीं होता है कि वो टीचर नहीं है। उसको यदि वो दुकान पे सामान लेने भी गया है तो उसकी दुकानदार के साथ भाषा और बर्ताव क्या है, उसका रास्ते में लोगों के साथ भाषा और बर्ताव क्या है, तो उसके रूटीन के अंदर क्या क्या चीजें शामिल है जो उसको कि अपनी इस सामाजिक दायित्व को बेहतर ढंग से निर्वाह करने में सक्षम बनाता है। इसमें से मुझे लगता है कि खासतौर से यदि आपके पास में जो भी बल्क में टाइम आता है, यदि हमारा रूटीन है, हमारा ये अभ्यास है, पहली बात तो ये कि जो हमारी किताबें हैं जो हमें हर साल बच्चों को पढ़ानी है, तो ऐसा तो है नहीं कि किताबें हर साल बदलती हैं, 2-5 साल में 10 साल में कभी कभी किताबें बदलती हैं। तो हम जिन कक्षाओं को पढ़ा रहे हैं उन किताबों के साथ तो हमें अदरवाइज भी बहुत अच्छी तरह से फैमिलियर होना ही होता है कि हम बहुत अच्छी तरह से अपनी उन किताबों को जानते हैं कि कौन सी कक्षा में कौन सी पाठ, यदि भाषा का शिक्षक है तो कौन सी कहानियां, कौन सी कविताएं, कौन से संस्मरण या जो भी और विधाएं उसमें शामिल है वो क्या क्या है, कौन से अन्य अवधारणाएं हैं जिन पर हमें बच्चों के साथ काम करने हैं। तो जो पाठ्य पुस्तक है या जो करिकुलम और सिलेबस से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, वो तो मैं ये मान के चलती हूँ कि एक शिक्षक को हर समय उसके साथ तैयार होना ही चाहिए, लेकिन खाली समय है उसमें दरअसल शिक्षक और खासतौर से भाषा का शिक्षक खुद अपना पढ़ने और लिखने का अभ्यास क्या है, वो कंटेंट के अलावा जो कोर्स का कंटेंट है उसके अलावा पढ़ने का उसका अभ्यास करना है, वो क्या पढ़ता है। यदि एक समय में किसी लेखक की उसको स्कूल में बच्चों को पढ़ानी है तो उस लेखक की कम से कम 10 कहानियां उसने उसके अलावा पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, यदि उसको और बहुत समय पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। तो मुझे बहुत इम्पोर्टेंट ये लगता है, किसी भी विषय के शिक्षक के लिए लगता है, भाषा के शिक्षक के तौर लिए खासतौर से लगता है कि उसको उसकी अपनी पढ़ने की जो खासतौर से लिटरेचर पढ़ने का उसके पास में बहुत ब्रॉड एक्सपीरियंस होना चाहिए, बहुत सारी चीजें उसको पढ़े हुए होनी चाहिए, क्योंकि जब आप बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं तो आप भाषा के बहुत सारे बहुत तरह के इस्तेमाल को समझ कर अपने बच्चों को बहुत तरह से भाषा को इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो दूसरी बात लगती है कि आपका अपने बच्चों के बारे में आपका नजरिया क्या है, आप अपने बच्चों को देखते कैसे हैं, है ना, क्योंकि अंततः तो आपको स्कूल में जाके तो आपको हर साल आपने मान लीजिए ऐसा जो आपके पास बल्क टाइम आता है उस समय में आप अपने साल भर में आपको शिक्षण में कौन सी चुनौतियां, जो मुझे लगता है कि अगेन ये साल भर में करने का काम नहीं है, ये आपके निरंतर आपकी प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहिए कि किसी भी बात को पढ़ाते हुए किसी भी बात को समझाने में आपको चैलेंज कहाँ पे आए, आपको कौन सी बात कौन कक्षा के किस बच्चे को समझाना सबसे मुश्किल लगा, और यदि आप नहीं समझा पाए हैं तो ये बच्चे की नाकामी नहीं है, टीचर की नाकामी है कि वो अपने किसी एक बच्चे को किसी एक अवधारणा किसी एक पाठ किसी एक प्रश्न को ठीक से समझा नहीं पाया। तो अपनी उन चुनौतियों पर रिफ्लेक्ट करें, मुझे लगता है लिखना टीचर के लिए बहुत जरूरी है, खासतौर से भाषा के शिक्षक के लिए बहुत जरूरी है कि नियमित रूप से लिखने का,
हाँ वो लगातार लिखता रहे, और अब लिखने में जब वो परेशानी महसूस करेगा तो वो खुद ही प्रेरित होगा कि मैं मुझे पहले कुछ पढ़ लेना चाहिए।
बिल्कुल, हाँ अपनी डायरी लिखे, हाँ कुछ भी ऐसा लिखे, जरूरी नहीं है आपको कहानी लिखना है कविता लिखना है,
हाँ
लिखने के लिए उपयोगितावादी नजरिए से देखने की जरूरत नहीं है कि कहीं छपना है तभी लिखना है,
हाँ
अपने लिए लिखना है, अपने प्रोग्रेस को देखने के लिए लिखना है कि मुझसे मैं 10-5 साल पहले मैंने अपनी डायरी में क्या चीजें लिखी थी, आज मैं अपने आप को कहाँ पे देख रहा हूँ। नियमित अभ्यास होगा तो हम अपनी प्रोग्रेस को भी एक निरंतरता में देख पाएंगे कि हम कहाँ, हमारी समझ कहाँ थी, हमारी समझ कहाँ आई है, हमारे बच्चे किस तरह का परफॉर्म कर रहे थे, हमें कक्षा में किस तरह की चुनौतियां आ रही थी, हमने अपने पढ़ाने के तरीकों में कौन से बदलाव किए, तो उससे हम आगे कहाँ पे पहुंचे। तो मुझे लगता है कि शिक्षक के लिए चाहे छुट्टियों का समय हो चाहे छुट्टियां नहीं हो सकती, पढ़ना और लिखने का अभ्यास खास तौर से भाषा के शिक्षक के लिए मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है, ये होते रहना
चाहिए, लगातार होना चाहिए, स्कूल में भी होना चाहिए, स्कूल के बाहर भी होना चाहिए, वर्किंग डेज में भी होना चाहिए, छुट्टियों में भी होना चाहिए।
ये है अरपा रेडियो।
हो सके तो अब कोई शम्मा जलाइए, अगर हो सके तो अब कोई शम्मा जलाइए।
दिव्यानी जी, आप हमें ये बताएं कि यदि एक ऐसा शिक्षक है जो किसी शहरी विद्यालय में पढ़ा है और शिक्षक भर्ती अभियान में उसका चयन हो गया और उसकी पदस्थापना हो जाती है बस्तर जैसे किसी इलाके में जहां ऐसी बोली बोली जाती है जिसकी समझ उसे नहीं है, तो क्या ये एक तरह की समस्या है? क्योंकि निश्चित रूप से कि प्राथमिक शाला के बच्चे उस शिक्षक की भाषा तो नहीं जानते और वो शिक्षक भी हो सकता है या ऐसा होता ही है कि बस्तर में जिस इलाके में उसकी पोस्टिंग हुई है वहाँ की भाषा को न जाने, तो इस मुद्दे को आप कैसे एड्रेस करती हैं?
हाँ, पहली बात तो क्या इसे समस्या के तौर पे देखा जाए या इसको एक अवसर के तौर पे देखा, वहां से शुरू होता है। क्योंकि एक टीचर के लिए खुद लर्नेबिलिटी, उसका खुद सीखने के लिए तैयार होना बहुत जरूरी। टीचर बच्चों को कोई ऐसा नहीं है कि ज्ञान का लोटा भर के गए हैं और बच्चे को पूरा पिला के आ जाएंगे, है ना। की प्रक्रिया है वो छोटे से छोटे बच्चे के साथ में दूसरा हो, तो हम क्या इस खुलेपन के साथ, यदि मान लीजिए कि मैं राजस्थान में पली बड़ी, यहाँ पे मैंने अपनी शिक्षा अर्जित की और किसी भी परिस्थिति में मैं छत्तीसगढ़ में टीचर हो जाती हूँ, तो क्या मैं वहाँ पे हाथ पैर खड़े कर दूँ कि नहीं जी मैं तो अब यहाँ पे नहीं पढ़ा सकती हूँ क्योंकि मुझे तो यहाँ की भाषा नहीं आती है। लेकिन दरअसल भाषा सीखने का मसला खासतौर से बड़ी उम्र के बाद, क्योंकि बच्चे तो स्वाभाविक रूप से सीख ही जाते हैं अपने आसपास बोली जाने वाली भाषा को, हम लोग भी स्वाभाविक रूप से सीखते हैं अपने आसपास बोली जाने वाली भाषाओं को बड़ी उम्र के बाद में। जब हम ऐसी किसी भी परिस्थिति में पहुंच जाते हैं जहाँ पे कि जहाँ की भाषा हमारी अपनी भाषा से बहुत अलग है, तो बहुत सारे शब्द स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। उसके अंदर तो हमारे पास में ये मौका है कि एक बात तो ये कि ये जो बच्चे छोटे छोटे स्कूल में आ रहे हैं ये अपनी अपनी बोली को बहुत स्वाभाविक रूप से, बहुत सहज रूप से सीख के अर्जित करके आए हैं। वो जो सोचते हैं महसूस करते हैं उसको वो उस बोली में अभिव्यक्त कर सकते हैं, उनके पास में ये क्षमता है। पहली बात तो टीचर के लिए इस बच्चे की इस क्षमता को रिस्पेक्ट करना और एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि भाषा का शिक्षण जो है वो शुरू यहाँ से होता है कि हम पहले इस बात को समझें कि बच्चे के पास में भाषा के जो कौशल है ना, पढ़ना और लिखना नहीं है, लेकिन सुनना और बोलना, ये दोनों कौशल में वो पारंगत होकर स्कूल आए, वो बहुत अच्छे से अपनी भाषा में कही गई बात को सुनकर समझ सकता है और अपने से पूछे गए सवाल को अपनी बोली में सुनकर समझा सकता है।
बिल्कुल।
अब टीचर के सामने चैलेंज ये है कि जो भाषा हम सिखाने के लिए जा रहे हैं या जो भाषा हम जानते हैं उसमें और बच्चे की भाषा में फर्क कितना है, है ना, संरचनागत फर्क कितना है। या मान लीजिए कि कोई अंग्रेज व्यक्ति आ गया और वो छत्तीसगढ़ में चला गया जहाँ पे भाषागत संरचना बहुत अलग है, तो हो सकता है उसके सामने चुनौती और बड़ी होगी। जो हिंदी भाषी लोग, हिंदी भाषा में जिनका पढ़ने लिखने का अभ्यास रहा है, वो जब छत्तीसगढ़ की बोलियों के साथ में अंतर्क्रिया करता है तो मुझे भी एग्जैक्टली नहीं मालूम कि कितना डिफरेंस है, लेकिन ये खुलापन जरूरी है पहली बात तो कि हम उनके उस भाषा को समझने के लिए हम कितना तैयार हैं, वहां से रास्ता निकलता है और हम बच्चे के साथ में एक इस तरह का रिश्ता बना रहे हैं जहाँ पे बच्चा हमारी बात को धैर्य से सुनने के लिए इच्छुक हो, उसे हमसे डर नहीं लगे कि हम अगले वाक्य में उसको डांट देंगे, तो वो हमारी बात को समझने की कोशिश करेगा। तो हो सकता है कि आप उसे छत्तीसगढ़ी में सुने और आप हिंदी में उसको अपनी बात समझा। यदि टीचर ने बच्चे की भाषा बोलनी शुरू कर दी तो बच्चा वो भाषा कैसे सीखेगा जो सिखाने के लिए गए। तो आपको इस दोनों के बीच का वो संतुलन तलाश करना है जहाँ से कि आप उसके साथ में जो भाषा सिखाने के लिए कक्षा में गए हैं उस भाषा में संवाद करें और उसको जब तक वो इस भाषा को समझने के लिए तैयार नहीं होता है तब तक उसको अपनी भाषा में आपके पूछे गए प्रश्नों का जवाब देने की पूरी आजादी दें। क्योंकि जब वो आपने हिंदी में प्रश्न पूछा और बच्चे ने छत्तीसगढ़ी में जवाब दिया, इसका मतलब बच्चे ने आपके प्रश्न को ध्यान से सुना, है ना। ये सुनने का कौशल ऐसा थोड़ा ही है ढोल बजा दिया और बच्चे ने सुन लिया। सुनने का कौशल का मतलब ये कि आपकी बात को उसने सुन के समझा या नहीं समझा, पहली शर्त है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ऐसा तो नहीं कह सकते कि ये जो बोली और भाषा का फर्क है ये अपन के लिए कोई चुनौती नहीं पैदा करता। ये चुनौती है, लेकिन ये जितनी बड़ी चुनौती है उतना ही बड़ा अवसर भी। इसको हम अवसर के तौर पे देखें। एक बात जो मुझे लगता है बहुत जरूरी है ये ध्यान में रखनी कि यदि टीचर ने पूरी तरह वो भाषा बोलना शुरू कर दिया, यानी कि यदि उसी इलाके का टीचर है और वहीं पे अपॉइंट हो गया, तो ज्यादा क्या चैलेंज है कि बहुत संभव है कि वो टीचर उस भाषा में बात करने लगे। ये टीचर को तो दूसरे ही जगह पर अपॉइंट होना चाहिए जहाँ पर उसकी भाषा नहीं है, ताकि वो कंसिस्टेंट रहे हिंदी बोलने पे और वो कंसिस्टेंट रहे बच्चे क्या बोल रहे हैं उसको समझने पे। और बच्चों को क्योंकि सुनने का अवसर आप कैसे देंगे, आसपास के सारे लोग तो स्थानीय भाषा ही बोल रहे हैं, तो आप ही हैं बच्चे को सुनने का अवसर दे रहे हैं, है ना। और जब सुन के समझने लगेगा तो आप धीरे धीरे हाथ पकड़ के उसको बोलने के स्तर पे भी ला सकते।
तो आप ये मानती हैं कि अध्यापक किसी भी भाषा का जानकार हो वो कहीं भी जाकर भाषा को सिखा सकता है और पढ़ा सकता है?
आसान तो नहीं है, ये मैं नहीं कह रही कि आसान है, है ना।
हाँ, आसान तो नहीं है, आसान तो मतलब शिक्षा को आसान मान लेने से ही तो शायद भाषा सीखने का मामला थोड़ा गड़बड़ाया है।
बिल्कुल, और भाषा के साथ तो सबसे ज्यादा हुआ है।
भाषा बहुत आसान मान ली गई, भाषा पढ़ाना बहुत, और खासकर प्राइमरी विद्यालयों की स्थिति पूरे भारत में कमोबेश एक जैसी ही है कि सबसे आसान प्राथमिक शाला का गणित पढ़ाना, सबसे आसान प्राथमिक शाला की भाषा पढ़ाना, मतलब प्राथमिक शाला में पढ़ाना तो जैसे कोई काम ही ना हो। आप क्या सोचती हैं दिव्यानी जी कि जैसे कितना जरूरी है ये बच्चे के लिए भी और हर व्यक्ति के लिए भी कि यदि मुझे गणित पढ़ना है तो मुझे हिंदी अच्छे से आनी चाहिए या वो भाषा अच्छे से आनी चाहिए जिसमें गणित मुझे समझाया जा रहा है। यदि मुझे विज्ञान पढ़ना है तो मेरे लिए हिंदी जानना बहुत जरूरी है क्योंकि बिना हिंदी जाने में विज्ञान समझ ही नहीं सकता। आपको क्या लगता है ये कितना जरूरी है?
मैं तो अक्सर मेरे सामने जब ये सवाल आता है तो मैं अपने जो अन्य विषयों के जो साथी हैं उनको कहती हूँ, अच्छा ठीक है आपसे भाषा ले लेते हैं, आप पढ़ाइए, आप विज्ञान पढ़ाइए, आपके पास भाषा नहीं है, आप गणित पढ़ाइए, भाषा नहीं है। और ये नहीं है, मतलब भाषा के पास में भी कंटेंट कहाँ से आता है। भाषा की कोई भी विषय वस्तु भाषा की अपनी नहीं है। आप कहानी पढ़ा रहे हैं तो वो कहानी कहीं ना कहीं समाज से आ रही है, इतिहास पढ़ा रहे हैं या हो सकता है आप समाजशास्त्र पढ़ा रहे हैं। तो इसलिए ये जो शिक्षा का जो सारा मामला है ये इतना कैटेगोरिकली एक दूसरे से अलग अलग है नहीं, है ना। चाहे गणित पढ़ाना है तो सुनने बोलना, सुनना पहली भाषा का दक्षता है, और यदि आप अंकों को भी बोल रहे हैं तो अंक भाषा भी है और अंक गणित भी है। जो संक्रियाओं का नाम दे रहे हैं, संक्रिया का नाम तो भाषा है, भाषा में है ना। तो ये तमाम अवधारणाएं जो हैं ये बहुत कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है इनके बीच में. आप भाषा को निकाल के किसी भी चीज को समझ पाएंगे बड़ा मुश्किल लगता है मुझे. और हो सकता है कि किसी स्तर पे ऐसा कहते हैं जो भाषा और विचार के बीच में जो बातचीत होती है तो उसमें कुछ दार्शनिकों का कुछ मनोवैज्ञानिकों का दावा है कि भाषा से पहले भी विचार एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो बहुत सीमित होता है ना. और तमाम विषय जो हैं वो किसी न किसी अवधारणा को प्रस्तुत कर रहे हैं. अब उस अवधारणा को आप आर्टिकुलेट कैसे करेंगे यदि आपके पास भाषा नहीं है तो इसलिए तमाम विषयों का और भाषा का जो रिश्ता है वो बहुत एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहने वाला है. और शिक्षण भी जो है भाषा का, मुझे लगता है कि कोई भी कक्षा, ये ठीक है कि आपको हो सकता है कि वर्तनी के दोष विज्ञान की कक्षा में बच्चे को ना बताएं, लेकिन विज्ञान की कक्षा के अंदर आपको जो सारी अंतर्क्रिया करनी है, बच्चे को जो अवधारणा समझानी है, तो उसके लिए बच्चे की पढ़ने लिखने के कौशल, बच्चे की सुन के समझने की क्षमता, जिस भाषा में आप समझा रहे हैं उस भाषा में बच्चे की एक स्तर तक उसकी समझ का विकसित होना, ये तो जरूरी है. और इसीलिए आरंभिक कक्षाओं में जो ज्यादा फोकस है वो लिटरेसी और न्यूमरेसी पे है ना. क्योंकि ये जो बिल्कुल बेसिक मैथ और बेसिक जो लिंग्विस्टिक स्किल्स हैं ये आपके बार बार काम आते हैं, है ना. और इसी से आप जटिल जो अवधारणाएं हैं उनके ऊपर बाद की कक्षाओं में जाते हैं कि पहले इन पे बच्चे की पकड़ इतनी मजबूत हो जाए कि बच्चा फिर अन्य चीजों के साथ में ठीक से अंतर्क्रिया कर पाए, उनको समझ पाए और काम कर पाए. तो ये तो बहुत ही मजबूत, बहुत आपस में जुड़ा हुआ रिश्ता है, इनमें इनको एक दूसरे से अलग कर नहीं सकते. इसीलिए मुझे लगता है टीचर्स के बीच में भी आपस में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है, अलग अलग विषय को पढ़ाने वालों के बीच में भी, ताकि वो एक दूसरे को मदद कर सके और एक दूसरे के चैलेंजेस को समझ पाए.
बिल्कुल बिल्कुल.
हो सके तो अब कोई शम्मा जलाइए, 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 इस तारे सियासत का अंधेरा मिटाइए, इस तारे सियासत का अंधेरा मिटाइए.
ये बड़ी अच्छी बात कही आपने कि सभी अलग अलग विषयों के शिक्षकों का आपस में जुड़ाव बहुत जरूरी है. उसको थोड़ा एक ब्रॉडर एंगल अगर मैं लेकर देखूं तो मुझे लगता है कि शिक्षा भी बहुत सारे लोगों की भागीदारी से ही संभव है. जैसे केवल केवल विद्यालय का जिम्मा नहीं है शायद शिक्षा, केवल टीचर का जिम्मा नहीं है या केवल सरकार का जिम्मा नहीं है, ये समाज का भी जिम्मा है, घर का भी जिम्मा है, सब लोगों का सामूहिक मसला है ये. तो केवल आप स्कूल के भरोसे हम पढ़ लेगा बच्चा, ये कहना भी ठीक नहीं है. आप क्या कहती हैं इस मुद्दे पर?
मुझे लगता है कि ये इधर के सालों में ये बात काफी जोर शोर से कही जाने लगी है. समुदाय की, परिवार की निश्चित रूप से एक सीमा तक जिम्मेदारी है, लेकिन स्कूल को खास तौर से स्कूल की जिम्मेदारी है ना. कि मान लीजिए परिवार में, बल्कि स्कूल को इसको भी समझना है कि परिवार में या समाज में संकट क्या है, है ना. बच्चे के सीखने का, यदि मान लीजिए कि बच्चा इस किसी ऐसी पृष्ठभूमि से आ रहा है जहाँ पे कि परिवार में पहला पढ़ने लिखने वाला, स्कूल जाने वाला व्यक्ति बच्चा ही है, वही बच्चा है, तो अब वो परिवार जो बच्चे को संस्कार दे के भेज रहा है वो क्या किस माहौल से आ रहा है, ये समझने की जिम्मेदारी तो स्कूल की और टीचर की. अब आप ये जिम्मेदारी कैसे समाज पे डाल देंगे कि वो बच्चे को, या परिवार पे डाल देंगे कि वो बच्चे को गणित सिखाए या होमवर्क कराए या कुछ भी और करे. अब क्योंकि जिन माता पिता को आता ही नहीं है, जिन माता पिता को खुद अक्षर ज्ञान नहीं है, वो क्या करेंगे? वो ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि बच्चे को पढ़ने बैठने के लिए कह दे, है ना. लेकिन ये जो पेडागोजिकल अप्रोच वो तो उसको नहीं समझ सकते ना. इसलिए मुझे लगता है कि देखिए प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल में से नहीं लेगा. आप अस्पताल में जाते हैं तो ये नहीं कहते हैं कि जी स्वस्थ रहना तो समाज की भी जिम्मेदारी है। आप उस वक्त डॉक्टर के पास ही जाते हैं ना, आप कहते हैं कि डॉक्टर इलाज करेगा, डॉक्टर दवाई देगा, डॉक्टर सही डायग्नोस करेगा। तो एक तरफ हमें इस बात से बड़ी तकलीफ होती है कि शिक्षा के बारे में हर एक कोई जो है वो एक्सपर्ट बन जाता है, दूसरी तरफ हमें इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन भी नहीं करना चाहते हैं। हम कहते हैं जी सबकी जिम्मेदारी है, तो फिर सबकी जिम्मेदारी, तो फिर सबसे सुनने के लिए तैयार रहिए। नहीं तो अपनी जिम्मेदारी को ठीक से लीजिए कि नहीं हमारी जिम्मेदारी, हम बच्चे को कैसे सिखाना चाहिए, हम इस बात को अच्छे से समझेंगे और अच्छे से करेंगे। जो सहयोग समाज से चाहिए उस सहयोग के लिए समाज को तैयार करेंगे।
वो संवाद करेंगे।
ये लगता है कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को शिफ्ट कर देना है ना सोसाइटी पे, ये इसने ज्यादा नुकसान किया है शिक्षा का भला करने की बजाय।
बहुत सारे शिक्षक हमने ऐसे भी देखे हैं जो जिम्मेदारी को सिर्फ समाज पर नहीं डालते, या जिम्मेदारी को सिर्फ बच्चे के सिर नहीं मर देते, ये होमवर्क करके नहीं आता, ये कुछ प्रैक्टिस नहीं करता, वो खुद बहुत सारी कोशिश करते हैं, वो खुद सोचते हैं, समझते हैं, बड़े संवेदनशीलता से वो सारे वो रास्ते खोजना चाहते हैं कि किसी तरह मैं ये जो बच्चे आए हैं मेरे पास, मैं इनके अंदर वो डाल सकूं जिसका मेरा जिम्मा है। लेकिन उसके बावजूद उनको कुछ समस्याएं आती हैं, जैसे वो ये नहीं समझ पाते कि मैं शुरू कैसे करूं, वो कई बार ये समझ नहीं पाते कि इस बच्चे की अल्टीमेटली रिक्वायरमेंट तो 10वीं की बोर्ड परीक्षा में पास होना है, और कैसे मैं व्यवहारिक शिक्षा की तरफ चला जाऊं, कैसे मैं गतिविधि आधारित शिक्षण कराऊं, जबकि इसको तो जरूरी है कि ये बोर्ड परीक्षा पास कर ले। तो बड़ी बड़ी ऊहापोह की स्थिति में होता है वो, उसको प्रशासन कुछ कहता है, उसको उसका प्रिंसिपल साहब ये कहते हैं उसे कि नहीं नहीं यार ये सब तो ठीक है अपनी जगह, गीत गोविंद और कथा कहानी तुम तो प्रश्नावली हल कराओ उससे, या तुम तो उसको परिभाषा लिखवाओ, या वो प्रश्नों के उत्तर दे सके इस काबिल बना दो। तो इस चुनौती से कैसे निपटे, मतलब मैं बहुत सारे शिक्षकों के संपर्क में या उनसे बातचीत के दौरान ये महसूस करता हूँ, ये भी एक बड़ी चुनौती है उनके साथ कि एक परीक्षा पास करना एक मुद्दा है और खेल खेल में शिक्षा एक मुद्दा है, तो दोनों के बीच कई लोग तालमेल ही नहीं बैठा पाते, खोजना चाहते हैं लेकिन उनको वो रास्ते नहीं मिलते। आप इसको एड्रेस करिए थोड़ा।
तो बहुत बड़ी संख्या में शिक्षकों के साथ में बातचीत का काम करने का अनुभव मेरा भी रहा है, और ये चुनौती अक्सर बहुत सारे शिक्षक इस बात को कहते हैं। तो एक बात तो मुझे ये लगती है कि गतिविधि जब हम करवा रहे हैं तो हम गतिविधि किस चीज के लिए करवा रहे हैं, गतिविधि अलग और शिक्षा अलग। और खास तौर से बोर्ड की परीक्षा की चिंता तो स्वाभाविक है, लेकिन बोर्ड की परीक्षा तो बच्चे को 10 साल बाद देनी है। तो हम यदि प्राथमिक कक्षाओं में हमने यदि बच्चे को पढ़ के समझने के लिए और समझ के अपनी बात को लिखने के लिए तैयार कर दिया है, और इसके लिए हमने चाहे कोई गतिविधियां इस्तेमाल किया, हमने गीत इस्तेमाल किया, कविता इस्तेमाल किया, चित्रकार इस्तेमाल किया, और तमाम तरह की गतिविधियां हमने की, कहानियां सुनाई बच्चों को बहुत सारी, कहानियों में से शब्दों को चुनना, उन पे गतिविधियां करवाना, शब्दों के जाले बनवाना, तमाम चीजें की, ये सब कुछ करते हुए यदि हमने बच्चे को किसी भी टेक्स्ट को पढ़ के समझने में सक्षम बना दिया है, और विज्ञान इस आरंभिक कक्षाओं में जहाँ पे हम EVS पढ़ा रहे होते हैं उसमें हमने यदि बच्चे को चीजों का अवलोकन करने में, अवलोकन करते हुए विश्लेषण करने में और उससे कुछ निष्कर्षों तक जाने की जो प्रक्रियाएं हैं, जो विज्ञान में जिस तरह के भी अवधारणाओं के बनाने की बात की जाती है उसमें जो जो स्टेप्स बताए जाते हैं, गणित में हम जिन संक्रियाओं की बात करते हैं तो गणित में बच्चे को यदि हमने गिनने की जो बेसिक जो गिनने की स्किल है वो सिखाई है, और गिनने की स्किल के साथ में हमने जोड़ कैसे किया जाता है उसका जो उसको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग उसकी हो गई है, जोड़ की, बाकी की, स्थान मान की, गुणा करने की, भाग करने की अवधारणात्मक समझ यदि हमने इन कक्षाओं के स्तर पर बना दी, यानी कि बच्चा खुद अपने सीखने के लिए आत्मनिर्भर होने लगता है। तो बड़ी कक्षाओं में जाके उसके सामने कोई भी टेक्स्ट आएगा तो कम से कम उस टेक्स्ट को पढ़ के समझना और समझ के जवाब देना, इतने के लिए तो हमने तैयार कर दिया ना, ये जिम्मेदारी हमारी, और इसी के लिए हमको गतिविधियों की ज्यादा जरूरत पड़ती है। है ना, क्योंकि यहाँ पे अभी बच्चे को स्कूली शिक्षा जो है उसके अपने बाहर के घर से घर और दोस्तों के साथ का जो जीवन है उससे अलग तरह के अनुशासन की मांग करती है। यहाँ पे यदि हमने उसको रुचि विकसित कर दी है तो मुझे लगता है बोर्ड की परीक्षा तो उसको 10 साल बाद देनी है, उससे पहले उसको इस लायक बना दीजिए कि अपने सीखने के लिए खुद इंडिपेंडेंट हो जाए, तो आपका काम तो धीरे धीरे कम हो जाने वाला।
कर रहे हैं आंधियां रुकने का इंतजार, आइए हमारे कांधे से कांधा मिलाइए, आइए हमारे कांधे से कांधा मिलाइए, आइए हमारे कांधे से कांधा मिलाइए।
शिक्षक का ये प्रयास याद आता है कि वो गणित के शिक्षक हैं, मिडिल स्कूल में रहे किसी समय, तो वो उन्होंने बड़ा अच्छा एक तरीका आजमाया कि वो बच्चे भाषा ही नहीं कर पा रहे थे, तो समस्या ये थी कि वो जब भाषा ही नहीं समझ पा रहे हैं या बोल नहीं पा रहे या लिख नहीं पा रहे, इवन पढ़कर भी समझ नहीं पा रहे, तो वो गणित को क्या समझेंगे या गणित के गूढ़ कॉन्सेप्ट को कैसे समझ। तो उन्होंने एक नाटक कराया और नाटक कराते कराते वो शिक्षक उन बच्चों के साथ ऐसे घुल मिल गए और बच्चों को भी वो जरूरत महसूस होने लगी कि मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे कैसे पढ़ते हैं ये सीखना चाहिए। और फिर बहुत जल्दी तो नहीं लेकिन उस वो सत्र खत्म होते होते उन्होंने ये देखा कि बहुत सारे बच्चे, मतलब उस कक्षा के लगभग 90% बच्चे बहुत अच्छे से भाषा को पढ़ और समझ पा रहे थे और कम से कम खुद रास्ते खोजने लगे थे कि हाँ मुझे पढ़ना है और पढ़ना कैसे सीखते हैं, ये फला व्यक्ति बता पाएगा, ये भैया ये गुरुजी बता पाएंगे। तो शायद आप ऐसे ही किसी प्रयासों की तरफ इशारा कर रही हैं।
बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं हमारे सिस्टम के अंदर जो अपने जो सिस्टम के जो तमाम उनके ऊपर बंदिश है उनके बियॉन्ड जाके काम करते हैं और उन्हीं शिक्षकों के भरोसे ये सिस्टम अभी तक चल रहा है ना
जी।
तो और ऐसे लोगों की संख्या बहुत बड़ी है, कम नहीं है। एक बात तो ये है और मैं उन तमाम लोगों को बधाई देती हूँ जो इस तरह की कोशिशें लगातार करते हैं। दूसरी बात, बच्चों को खासतौर से प्राइमरी लेवल पे तो किसी भी एक भी शिक्षक यदि उनको ऐसा मिल जाता है ना जो वो बाकी दूसरे टीचर्स की कमियों को भी ओवरकम कर लेता है, क्योंकि बेसिकली उसको एक्सपोज तो उन बेसिक स्किल्स के लिए ही करना है ना। तो आगे की कक्षाओं में तो हो सकता है कि आपको विषय के स्पेसिफिक टीचर की जरूरत पड़ेगी क्योंकि उन विषयों की जो अवधारणागत जटिलताएं वो पड़ जाती है, लेकिन प्राथमिक कक्षाओं में तो कोई एक या दो टीचर भी यदि ठान ले तो वो अपने बच्चों को गणित और भाषा सब सिखा ले जा सकता है। तो कन्विक्शन चाहिए कि बच्चे को अपने सीखने में आत्मनिर्भर बनाना है, आसान नहीं है फिर भी, मतलब मैं कहीं पर भी किसी भी स्तर पर टीचर के काम को अंडर एस्टिमेट करके कोई बात नहीं कह रही हूँ, मुश्किल है लेकिन आपकी लगन जो है उसका कोई मुकाबला नहीं है, उसको कोई चैलेंज नहीं करता। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात जो मुझे लगती है कि हर एक बच्चा सीखने के लिए, मतलब वो पैदा ही सीखने के लिए हुआ है ना, तो उसकी एक क्षमता में हम भरोसा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उसको इस तरह से, क्योंकि वो जब स्कूल में आ रहा है यदि वो स्कूल में अपनी भाषा के अंदर अपनी बात कहना सीख के आया है, अपनी भाषा में सुनी हुई बात को समझ सकता है, तो इसका मतलब उसके दिमाग में कोई डिफेक्ट नहीं है। उस बच्चे को सीखना आता है
जी।
अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको जो आप सिखाना चाहते हो उसकी दिशा में आप लेके कैसे आते हैं, है ना। तो यहाँ से वहां भी हमारी मान्यता ठीक ठाक है, बच्चा किसी भी पृष्ठभूमि से आ रहा हो वो पैदा हुआ है सीखने के लिए, वो किसी न किसी तरह से सीख लेगा। हम जो उसको सिखाना चाहते हैं वो हम कितना उसकी रुचि को हम कैसे डेवलप कर पाते हैं, हम उसको क्या कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है।
वो चैलेंज हमको लेना है।
बिल्कुल, बहुत सारे लोग हैं जो हमें प्रेरित करते रहते हैं लगातार चैलेंजेस लेने के लिए। हमारे श्रोता आपको सुन रहे हैं और उन श्रोताओं में बहुत बड़ी संख्या उन शिक्षकों की है जो आपको पूरी तरह सुनकर समझने की कोशिश कर रहे होंगे, और आपके माध्यम से ही हम उन श्रोताओं को ये भी बताना चाहते हैं कि भाषा शिक्षण के उनके जो तौर तरीके हैं उनकी उनमें आपकी बातें बहुत काम आएंगी उन्हें, और वे छुट्टियों का भी बेहतर उपयोग कर पाएंगे और अपने स्कूल के सत्र के दौरान भी जब वो कक्षाओं में जाते हैं या उन कक्षाओं के बारे में कुछ काम करते हैं तो कुछ ऐसी चीजें खोज पाएंगे और कर भी पाएंगे जो वाकई एक शिक्षक के लिए बहुत जरूरी होती हैं।
कर हो सके तो अब कोई शम्मा जलाइए, कर हो सके तो अब कोई शम्मा जलाइए, इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए, इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए।
दिव्यानी जी, हमने सुना है कि भाषा के साथ आपका जो जुड़ाव है वो आपकी कविताओं के माध्यम से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। मतलब मैंने ऐसा सुन रखा है कि आप बहुत सारी कविताओं के माध्यम से भी अपने विचार रखती रही हैं, और हम आपसे गुजारिश भी करते हैं कि आप कृपया हमें सुनाएं कि कुछ कविताएं।
जी जरूर, मैं कुछ कविताएं सुनाती हूँ आपको। मुझे लगता है कि मेरी कविताएं बहुत मुश्किल कविताएं नहीं है। मैं तीन कविताएं आपको सुनाती हूँ।
जी,
एक कविता है बच्चे, बच्चे शीर्षक से तीन छोटी छोटी कविता है।
जी जी बिल्कुल।
कविता है संविधान और एक कविता है रिक्त स्थानों की पूर्ति का।
अगर हो सके तो अब कोई शम्मा जलाइए।
पहली कविता है, वे रंगों को बिखेर देते हैं कागज पर और तलाशते रहते हैं उनमें औघर रूपाकाश। वे रंगों को बिखेर देते हैं कागज पर और तलाशते रहते हैं उनमें औघर रूपाकार। सब चीजों के लिए कोई नाम है उनके पास। हर आकार के पीछे कोई कहानी बनती बुनती रहती है उनके मन में। कभी पूछ कर तो देखो ये क्या बनाया तुमने, कभी पूछ कर तो देखो ये क्या बनाया तुमने, झरने की तरह बह निकलती है बातें। नहीं, प्रपात की तरह नहीं, झरने की तरह मीठी मंथर, कहीं थोड़ा ठहर जाती और फिर जहां राह देखती उसी दिशा में बह निकलती। भाषा जहां कम पढ़ने लगती है उचक कर थाम लेते हैं कोई सिरा, मानो गिलहरी फुदक कर चढ़ गई हो बेरी के झाड़ पर। उनसे जब बात करो तो बोलो इस तरह जैसे बेरी का झाड़ बढ़ा देता है अपनी शाख को गिलहरी की तरफ। उनसे जब बात करो तो बोलो इस तरह जैसे बेरी का झाड़ बढ़ा देता है अपनी शाख को गिलहरी की तरफ। वे फुदक कर थाम लेंगे आपके सवालों का सिरा, पर जवाब की भाषा उनकी अपनी होगी, पर जवाब की भाषा
उनकी अपनी
अपनी होगी।
अगर हो सके तो अब कोई शम्मा जलाइए।
इसी शीर्षक से दूसरी कविता है।
जी,
उसने अपनी अंगुलियों के पोरों को डुबोया हरे रंग में और खींच दी है लकीरें हृदय पर। उसने अपनी अंगुलियों के पोरों को डुबोया हरे रंग में और खींच दी है लकीरें हृदय पर। उसने गाढ़े नीले से रंग दिया है फलक को, सुर्ख लाल रंग को बिखेर दिया है उसने घर के आंगन में। पीले फूलों से ढक दिया है उसने आसपास की वनस्पतियों को। उसे हर बार चाहिए नया सफेद कागज, जिसे हर बार सराबोर कर देना चाहता है वह रंगों से बच्चा रंगरेज।
अगर हो सके तो अब कोई शम्मा जलाइए।
तीसरी कविता है, धूप और बारिश के बीच आसमान में तना इंद्रधनुष है मेरे बच्चे। धूप और बारिश के बीच आसमान में तना इंद्रधनुष है मेरे बच्चे। आच्छादित है फलक उनकी सतरंगी आभा से, जिसके आर पार पसरा है हरा सब ओर। उनके पीछे कहीं ज्यादा गाढ़ा हो जाता है आसमान का नीला, कहीं ज्यादा सरसब्ज हो जाती है धरती। उनके पीछे कहीं ज्यादा गाढ़ा हो जाता है आसमान का नीला, कहीं ज्यादा सरसब्ज हो जाती है धरती।
क्या बात है।
हो सके तो अब कोई शम्मा जलाइए।
इसका शीर्षक है संज्ञान।
संज्ञान जी,
संज्ञान हम भाषा में बहुत, हम शिक्षण में बहुत काम में लेते हैं जब शिक्षा की बात करते हैं बच्चे के संज्ञानात्मक स्तर पर। तो ये संज्ञान को एक कवि के तौर पे मैं संज्ञान को कैसे देखती हूँ, इसको आप सुनिए
जी।
जब आंखें खोलो तो पी जाओ सारे दृश्य को, जब बंद करो तो सुदूर अंतस में बसी छवियों तक जा पहुंचो। जब आंखें खोलो तो पी जाओ सारे दृश्य को, जब बंद करो तो सुदूर अंतस में बसी छवियों तक जा पहुंचो। कोई ध्वनि न छूटे और तुम चुन लो अपनी स्मृतियों में संजोना है जिन्हें, जब छुओ ऐसे जैसे छुआ न हो इससे पहले कुछ भी, छुओ इस तरह चट्टान भी नर्म हो जाए महफूज हो तुम्हारी हथेली में, जब छुए जाओ बस मूंद लेना आंखें, हर स्वाद के लिए तत्पर हर गंध के लिए आतुर तुम।
वाह, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातचीत करके देवयानी जी। और जी, बस अब वो एक कविता यदि हमारी
प्रिय विषय जी, जी एक कविता मैं आपको सुनाती हूँ। खुद मुख्तार औरत। खुद मुख्तार औरत, अपने श्रम के पसीने से रचती हूँ स्वाभिमान का हर एक क्षण, अपने श्रम के पसीने से रचती हूँ स्वाभिमान का हर एक क्षण, रोज गढ़ती हूँ एक ख्वाब सहेजती हूँ उसे श्रम से क्लांत हथेलियों के बीच, रोज गढ़ती हूँ एक ख्वाब सहेजती हूँ उसे श्रम से क्लांत हथेलियों के बीच, आपके दिए अपमान के नश्तर अपने सीने में झेलती हूँ, आपके दिए अपमान के नश्तर अपने सीने में झेलती हूँ, सह जाती हूँ तिल तिल हंसती हूँ खिल खिल। क्षमा करें श्रीमान, मेरा माथा गर्व से उन्नत है, मुझसे न आवाज नीची रखी जाती है न निगाहें झुकाना आता है मुझे। क्षमा करें श्रीमान, मेरा माथा गर्व से उन्नत है, मुझसे न आवाज नीची रखी जाती है न निगाहें झुकाना आता है मुझे, मैंने सर उठाकर जीना सीखा है, जो न देखी जाती हो आपसे यह खुद मुख्तार औरत तो निगाहें फेर लिया।
वाह, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इच्छा तो है कि बस ये बात अनवरत चलती ही रहे, रुके ही ना, क्योंकि हमारी ऑडियंस लगातार ऐसे मुद्दों पर हमसे बातचीत की गुजारिश करती रही है, तो हमने आपसे बातचीत करने की सोची और आपने वो कंसेंट दिया, आपने स्वीकारा हमारा आग्रह, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अरपा रेडियो आपका तहे दिल से शुक्रगुजार है कि आपने अपना कीमती समय।
बहुत अच्छा लगा योगेश जी, आपने मुझे ये मौका दिया और मुझे बहुत अच्छा लगेगा इस रेडियो पे अपने इस कार्यक्रम के प्रसारण को सुन के और ये जान के कि लोग सुन रहे हैं, और यदि ये बातचीत उनके लिए कुछ काम आती है तो ये मेरे लिए बहुत बहुत खुशी की बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया
जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद करते हैं कि ये बातचीत एक शुरुआत है और हम आगे भी लगातार आपसे बातचीत करेंगे और हमारे श्रोताओं को आपकी बातचीत का प्रतिसाद मिले ऐसी कोशिश करते रहेंगे।
जरूर।
अरपा रेडियो आपका फिर से एक बार धन्यवाद ज्ञापित करता है।
भेंट मुलाकात योगेश के साथ। इस श्रृंखला में योगेश पांडे ने पहली बातचीत की है देवयानी भारद्वाज से। सुनते रहिए अरपा रेडियो, जिसमें भेंट मुलाकात योगेश के साथ क्रम में हम आगे भी आपको सुनवाते रहेंगे शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी बहुत सारी बातें देश के विभिन्न शिक्षाविदों के साथ, सिर्फ अरपा रेडियो पर।
ये है अर्पा रेडियो।